नमस्कार दोस्तों, जीरोधा पाठशाला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हमने ये सीरीज अप्रैल के महीने में चालू करी थी, जब बाजार में बहुत तेज करेक्शन देखने को मिला था। बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स और कई रिटेल इन्वेस्टर्स भी काफ़ी अचंभित थे कि म्यूचुअल फंड्स में और बाजारों में पैसे कैसे लगाएं। तब से जो मार्केट्स हैं काफ़ी संभल गए हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया उन्होंने, लेकिन शायद ही कोई सही तरह से प्रिडिक्ट कर सकता था मार्च में या अप्रैल में से। आज के दिन भी लोगों को सेम ही समस्याएं हैं और वही लोग सोच रहे हैं कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए। इन्हीं समस्याओं के बारे में बात करने के लिए, म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं और इसके अलावा निवेश कैसे करना चाहिए, आज हमारे साथ आशुतोष बिश्नोई जी मौजूद हैं, जो महिंद्रा म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ हैं। आशुतोष के पास पिछले 37 साल से कंज्यूमर मार्केटिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस में काम करने का एक्सपीरियंस रहा है, और इस कॉन्वर्सेशन में हम उनके साथ ये जानेंगे कि कैसे उनके एक्सपीरियंस में बाजारों में बदलाव हुआ, कैसे उन्होंने देखा कि मार्केट्स अभी कर रहे हैं और कैसा वो सोचते हैं कि एक रिटेल निवेशक को आगे अपने पर्सनल फाइनेंसेस में ध्यान देना चाहिए। आशुतोष, हमारे साथ ये करने के लिए बहुत शुक्रिया। आपसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल जर्नी कैसे चालू हुई, आप कैसे फाइनेंशियल मार्केट्स में आए और कैसे आप महिंद्रा एएमसी में काम करना आपने चालू किया।
बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इस आपकी पाठशाला में बुलाया आपने। मतलब एक टीचर का ओहदा दिया है तो कुछ टीचर जैसी बात करनी पड़ेगी, ऐसा डर लग रहा है मुझे। हम तो बैक बेंचर्स थे तो जरा टीचर के नाम से ही हमको थोड़ा डर लगता है, लेकिन सही बात बताऊं कि मैं जब एमबीए करके चुका, और इस बात को बहुत ज़माना हो गया है, तो मेरे दिमाग में स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट, म्यूचुअल फंड्स वगैरह का कोई एक इमेजिनेशन भी नहीं थी कि उस मार्केट में जाऊंगा। काफ़ी बचपन से और कॉलेज के ज़माने में भी मेरा सारा काम जो था वो मार्केटिंग, कंज्यूमर मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग वगैरह में रहा था, और उसी में मैं लगा था और काफ़ी बरसों तक उसी में लगा रहा। और एक इंसिडेंट हुआ मेरी लाइफ में दैट चेंज माई लाइफ, और वो इंसिडेंट था कि मैं एक व्यक्ति से मिला, उनका नाम मैं शेयर करना चाहूँगा। ये हैं हेमेंद्र कोठारी, जो कि डीएसपी के चेयरमैन हैं। इनसे मैं मिला एक सिलसिले में, जहाँ एक कॉन्फ्रेंस में साथ में हम लोग थे, वहाँ मुझे एक प्रेजेंटेशन करनी थी रिटेल मार्केट्स की, तो वो मैंने की। उसके बाद वो मुझे मिले और उन्होंने कहा कि मुझसे आके मिलो, तो मैं मिलने गया। तो उन्होंने कहा कि आशुतोष, यू नो आई वुड लाइक यू टू वर्क फॉर मी, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे लिए काम करो। तो मैंने बोला आप करते क्या हैं, तो बोला कि मैं, हमारी कंपनी है डी एस प्रभुदासन कंपनी, वन ऑफ इंडियाज लीडिंग स्टॉक ब्रोकर्स, ये बात है 1993 की। तो मैंने बोला सर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँगा कि शेयर की दलाली करने जाऊँगा तो शायद मुझे घर से निकाल देंगे। तो वो जमाने में समझिए कि एक किस्सा बड़ा हो चुका था तभी, जिसके बारे में आज की भी एक नई फिल्म बनी है। तो अगर मैं अपने माता पिता से कहता कि मुझे शेयर की दलाली करनी है तो 100% बाहर निकाल देते। तो लेकिन उन्होंने कहा कि देखो, हम मेरिल लिंच के साथ जॉइंट वेंचर करने वाले हैं, मुझे ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो कि एक ओपन वे में मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग और सेल्स के बारे में सोचते हों, हु डोंट नॉट हैव बैगेज अबाउट द मार्केट। तो मैंने बोला मेरा तो अच्छा काम चल रहा है, आई वॉज हैंडलिंग फैंटास्टिक ग्लोबल ब्रांड्स फॉर यू नो एडवर्टाइजिंग, सम ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो आई सेड मेरा तो बढ़िया काम चल रहा है, आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ, सो व्हाई शुड आई स्विच। सो ही सेड टू मी, और मैं ये इफ यू डोंट माइंड इंग्लिश में कहना चाहूँगा,
बिल्कुल
दीज आर द वर्ड्स ही यूज्ड, ही सेड आशुतोष मिडिल क्लास पीपल लाइक यू एंड मी कैनॉट अफोर्ड, कैनॉट इमेजिन बिकमिंग वेल्दी इन आवर लाइफ टाइम Unless there are four things, four kinds of middle class people can become wealthy in their lifetime. Number one, you have the head to do a big scam. And he said, Arshad Mehta ne try kiya tha, lekin chala nahi. And somehow looking at you, I don't think you are made to do a scam. Then number two is, you are a person with a great technological idea. 1993 mein Bill Gates or Steve Jobs ko koi khas jante nahi the log. He gave me an example of Henry Ford, the gentleman who devised the car. And he said that man had vision and he had a fantastic technological idea. He was became wealthy. And number three is, you are a superb entertainer of some kind. आप में इतना टैलेंट है कि लोग आपको देखने के लिए पैसा दें. इसे अगर वो टैलेंट हमारे पास होता तो हम यहाँ नहीं होते. तो नंबर फोर इज, यू गेट इन टू द स्टॉक मार्केट एंड मेक योर सेल्फ वेल्दी. तो मुझे लगा ये आदमी कुछ ज़्यादा बोल गया. सो आई सेड बट हाउ कैन यू सो बी कॉन्फिडेंट कि एवरीबडी कैन डू इट. देन ही गेव मी अ लिटिल बुक विच वॉज अ बायोग्राफी ऑफ वॉरेन बफेट, who by 1993 already was a legend. उसके बारे में मैंने पढ़ा. मैंने बोला यार ये आदमी तो मेरे से भी कम क्वालिफाइड है और एक किसी दुनिया के कोने में रह के इसने ये सब कर सकता है, तो डेफिनेटली आई वॉन्ट टू ट्राई. आई वॉज यंग एंड आई वॉज ऑलवेज अप फॉर अ न्यू थिंग. एंड मेरिल लिंच इन एनी केस एज अ ब्रांड वॉज अ फैंटास्टिक ब्रांड इवन नाउ. तो मैंने सब मार्केटिंग छोड़ के आई ज्वाइंड हेमेंद्र कोठारी इन DSP. Which became DSP Merrill Lynch and later a very, very successful house. And I still look up to Mr. Kothari as a mentor. Is journey pe shuru hone ke baad samajh mein aaya ki what he was saying, there was a lot of truth in it. But it was not as simple as you join the business and you will be wealthy. Isme bahut lagan lagti hai, kaam bahut hai, padhai karni padti hai. Kafi detailed analysis ka kaam hai. तो इस तरह मेरी जर्नी शुरू हुई इस मार्केट में. दिस इज अबाउट ऑलमोस्ट 25 इयर्स अगो.
और आशुतोष आप महिंद्रा से कैसे जुड़े?
सो इन माय जर्नी ऑफ 25 इयर्स आई हैव टू टेल यू कि मैं एंटरप्रेन्योरियल ज़्यादा रहा हूँ. मैं कंपनीज में मैंने काम किया. मैंने DSP मेरिल लिंच में काम किया, उसके बाद JM में भी काम किया है. मैंने UTI में काम किया जहाँ मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था. और वहाँ जब काम किया तो ये लगा कि UTI के टर्न अराउंड के बाद, जो कि इतना बड़ा काम हुआ कि एक कंपनी जो कि गवर्नमेंट की एक प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, उसको एक टीम के साथ मिलके हमने टर्न अराउंड किया फ्रॉम स्टॉपिंग इट फ्रॉम शटिंग डाउन टू टर्निंग इट अराउंड. और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने हमको कुछ पैसे दिए थे कि इसको बेल आउट करिए. हमने वो पैसे डिविडेंड समेत जब वापस दिए, आई थिंक दैट टोटल चेक वी गेव रन इनटू थाउजेंड ऑफ क्रोर्स. तो इतना बड़ा टर्न अराउंड हमने किया था. फिर ये लगा कि ये सब करने के बाद नौकरी कौन करेगा, इससे अच्छी नौकरी कहाँ मिलने वाली है. सो आई स्टार्टेड टू बी अ कंसल्टेंट विद मैनी मैनी लीडिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल कंपनीज. और एंटरप्रेन्योरियल तरीके से मैं महिंद्रा से जुड़ा. उन्हें कुछ काम करवाना था अपना. I was available as a consultant and I did that work. And then they said ki we want to create a fiduciary business jahan customer, Mahindra Finance jaisa aap jante hain, lending business hai. To unhone kaha hame aisa business karna hai jahan customer ko own kare and for lifetime. It should be a fiduciary trust. We discussed many businesses and aisa laga ki mutual fund is the right way to start. And there can be other businesses later. So my job actually was to find a team and hand it over. पर जैसे जैसे उसका प्लान बनाते गए, ये ऐसा लगने लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ ऐसा कुछ करने की अपॉर्चुनिटी है जो लाइफ टाइम में कभी कभी मिलती है. कि मतलब आप छोटे छोटे शहरों में जाके और ऐसे लोगों को समझाएं कि उनको दे कैन मेक द सेम स्टोरी दैट कोठारी जी टोल्ड मी कि दे कैन ऑल्सो डू दैट. हाउ एवर आई वॉज कमिटेड टू फाइंडिंग अ टीम. बड़ी मुश्किल हुई. बाय द टाइम वी सेट अप द मार्केट वॉज मेल्टिंग डाउन. And nobody thought, another new mutual fund should start. Already many of the international players were exiting and there was a glut in the market of people and nobody wanted a job with another startup. So here, the management told me, bhai, aapne to UTI ka itna bada kaam kiya chote chote shaharon mein jaake. You understand the domain, to aap hi kar lijiye. Maine bola, chalo, jo kaam koi aur nahi karta, hum karne ko tayar hain. तो उसी स्पिरिट में शुरू किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। महिंद्रा कंपनी जो करती है, बहुत कम कंपनियां उस तरह से किसी भी मार्केट में जाके छोटे छोटे शहरों में ऑटोमोटिव्स बेचना, लोन अवेलेबल करवाना, यहाँ तक कि इंश्योरेंस ब्रोकिंग में भी दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स, बट ओनली ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग अ प्लेयर इन स्मॉल टाउन्स। तो ये छोटे शहरों, कस्बों, इलाकों का जो एक ब्रांड है, उसके साथ जुड़ने में जो खास खुशी होती है, क्योंकि एक नया काम करने को मिलता है, तो इसीलिए हम जुड़े हैं। अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा है।
आशुतोष, जैसे आपने बताया कि छोटे शहरों में जनरली आपका काम काफ़ी रहा है महिंद्रा के साथ में, इंडिया में जनरली सभी लोग शायद महिंद्रा का नाम जानते हैं, किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने सुना है, महिंद्रा की गाड़ियों को लोगों ने देखा है। म्यूचुअल फंड डिवीजन है महिंद्रा का, ये शायद बहुत लोगों को नहीं पता है। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं या पहली बार जिन्हें जानने को मिल रहा है कि महिंद्रा का म्यूचुअल फंड डिवीजन है, उन्हें आप बता सकेंगे कि महिंद्रा म्यूचुअल फंड की कोर फिलॉसफी क्या है, दूसरे म्यूचुअल फंड एएमसी से ये कैसे अलग है?
अलग है या नहीं है ये मैं नहीं जानता। मैं तो ये जानता हूँ कि जिस इन्वेस्टर को ध्यान में रख के ये बिजनेस बनाया जा रहा है, उस इन्वेस्टर की क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, उन्हें क्या चाहिए होगा अपने इन्वेस्टमेंट में से, इसको ध्यान में रखते हुए हमने बिजनेस बढ़ाने की कोशिश की है। तो सबसे पहली बात हमने ये की, क्योंकि मैं कंज्यूमर मार्केट में बहुत करीब 15-16 साल रह चुका हूँ, मुझे ये लगा कि अगर हमें छोटे शहरों में बेचना है तो ये नामुमकिन होगा कि लोग म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए अंग्रेजी सीखें। ऐसा किसी को नहीं पड़ी है कि मुझे म्यूचुअल फंड खरीदना है तो अभी अंग्रेजी में सीखूंगा। तो मैंने सिंपल FMCG अप्रोच लिया कि हम जो कुछ भी करेंगे वो हर हिंदुस्तानी भाषा में करेंगे। तो हमने शुरू किया अपने प्रोडक्ट नेम्स का, और मैं कह सकता हूँ कि उस ज़माने में मुझे पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था कि मुझे अप्रूवल भी मिल जाएगा रेगुलेटर से कि आपने हिंदी में कैसे नाम रख दिया। तो बट दे वर वेरी सपोर्टिव एंड वेरी अंडरस्टैंडिंग, एंड दे ऑल्सो, उन्हें भी लगा कि भाई आगे कोई जाना चाहता है उसे बढ़ावा मिलना चाहिए। सो एक हाइब्रिड ब्रांडिंग मॉडल हमने निकाला। हमारी हर फंड का नाम कहीं ना कहीं अंग्रेजी और हिंदी से जुड़ा होता है मिलके भी, ताकि सारे इंडिया में जो है वो ठीक से समझ आ सके कि लोगों को समझ तो आए कि मैं खरीद कर रहे हैं। और मैं नहीं सोचता कि ये बड़ी इन्वेंशन है, उससे पहले बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया में हुए हैं जो भी ये कर चुके हैं। सो इट इज़ सिंपली बीइंग मोर कस्टमर फ्रेंडली। प्रोडक्ट जैसे हम डिज़ाइन करते हैं उसमें सोच के चलते हैं कि अगर छोटे इन्वेस्टर को पैसा डालना होगा तो वो ये सोचेगा कि मेरा पैसा जो है इसमें घटाव नहीं आना चाहिए, तो किस तरह इन्वेस्ट करेंगे। तो इधर होल स्ट्रैटेजी ऑफ स्टेइंग विद हाई क्वालिटी इन बोथ एक्विटीज एंड डेट हैज़ बीन अ कोर फिलोसफी, कि भाई हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कि समझो कि किसी ने टिप के तौर पर जैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं वो हम नहीं करेंगे। कि कोई एक स्टॉक्स हैं जो कि फटाफट बढ़ने वाले हैं, फिर पता नहीं क्या होगा उनका, बहती गंगा में हाथ नहीं धोएंगे हम। भले ही थोड़ा सा कम रिटर्न आए, हमें लगता है कि हमारे इन्वेस्टर को एक्सेप्टेबल है, कम रिटर्न चलेगा लेकिन घाटा नहीं चलेगा। क्योंकि ऐसे व्यक्ति हैं कि जो कि अपनी कमाई खुद रोजमर्रा रोजगार से करते हैं। छोटे शहरों की एक खास बात है इंडिया में कि यहाँ नौकरी पेशा लोग कम होते हैं। लोग कोई छोटा सा एक बिजनेस कर लेते हैं, कोई दुकान लगा लेता है, इस तरह का ज़्यादा है। मतलब इंडिया की अगर पॉपुलेशन देखेंगे तो सिर्फ 17% ऑफ द पॉपुलेशन इज सैलरीड, एंड मोस्ट ऑफ द सैलरीड पॉपुलेशन लिव्स इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। तो उसके बाहर जो लोग हैं उनके यहाँ ऐसा नहीं है कि रोज हर महीने एक सैलरी आ गई कि इतना पैसा मिल ही गया, ऐसा उनके यहाँ नहीं होता है। तो उनको ध्यान रखना पड़ता है कि भाई जो इन्वेस्ट किया है उसमें कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की फिलॉसफीज, इस तरह की कस्टमर ओरिएंटेशन हमारा हमेशा हमारे दिमाग में रहते हैं जब भी हम कोई किसी भी नए प्रोडक्ट को सामने लाते हैं। तो इसी तरह हम बढ़ा रहे हैं।
आशुतोष, इसी कस्टमर ओरिएंटेशन के साथ में, जहाँ पे आप क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं, कभी भी आप ज़रा से ज़्यादा रिटर्न्स के लिए अपने क्लाइंट्स के पैसे को रिस्क में नहीं लगाना चाहते, उसको ध्यान में रखते हुए क्या आपने ये देखा है कि छोटे शहरों में और गांव में जो इन्वेस्टर बिहेवियर रहा है या जो निवेशकों का जो बिहेवियर रहा है वो म्यूचुअल फंड्स के लिए या स्टॉक मार्केट में निवेश करते हुए अलग है या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज से थोड़ा डिफरेंट है? उस पर अगर थोड़ी टिप्पणी आप कर सकें।
बहुत ही अलग है, मैं बताऊं आपको। सबसे पहले तो उन शहरों में शेयर मार्केट के बारे में जो रेजिडुअल परसेप्शन है वो बहुत अच्छा नहीं है। मैं आपको उसकी हिस्ट्री बताता हूँ कि इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट्स इन द वर्ल्ड। जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था 1993-94 में, इंडिया में 30 से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंजेस होते थे, बट दे वर नॉट फिजिकली ट्रेडेड। जॉबर्स और स्टॉक ब्रोकर और सब ब्रोकर जो हैं गांव गांव में जाके लोगों को शेयर बेचते थे, तो तमाम सारे लोगों के और अभी भी वो पेपर पड़ा हुआ है और इट इज़ वर्थ नथिंग। तो लोगों की रेजिडुअल मेमोरी बहुत अच्छी नहीं है, जिनको नहीं मालूम है उनको नहीं मालूम है, ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है, क्योंकि द प्री प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रेफरेंस इज ऑफ रियल एसेट्स। हर व्यक्ति चाहता है कि एक जमीन का टुकड़ा और सोना, यही उनका मेन स्टे होता है। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि सोना जो है वो तो कभी कभी खरीदा जाता है, लेकिन जमीन का टुकड़ा हमेशा। और लेकिन हमने देखा कि पिछले 8-10 सालों में इसमें एक प्रॉब्लम आई है लोगों के दिमाग में, कि जहाँ तक रियल एस्टेट का सवाल है, गांव गांव में जहाँ भी एक सड़क बन गई है, जो जमीन के भाव हैं वो इतने बढ़ गए हैं कि अब खरीदी नहीं जाती। बेच लेते हैं लोग, बेच के तमाम पैसा बना लेते हैं, लेकिन दोबारा खरीदने का मौका नहीं मिल पाता है क्योंकि भाव इतने बढ़ गए हैं। मैं कहूँगा कि गांव और छोटे शहरों में इन लास्ट 10 ईयर्स द एप्रिसिएशन ऑन रियल एस्टेट प्राइसेस इज इवन एज हाई एज 1000% और मोर। तो देयरफॉर दे डोंट नो कि करें क्या पैसे का, जमीन खरीदते नहीं बनती, सोना भी बहुत महंगा लग रहा है, सो दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर लुकिंग टू ऑल्टरनेटिव। मतलब मैं यहाँ तक कहूँगा कि मैंने ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जिन्होंने रिवर्स इंटरेस्ट यानी पैसा दे के मनी लेंडर के पास रखाया है कि भैया तो संभाल के रख ले और 100 रुपये में 1 रुपया रख लीजो मेरा रखने के लिए। दिस इज हैपनिंग बिकॉज पीपल डोंट नो वॉट टू डू विद मनी, एंड वी थॉट दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि उनको एजुकेट किया जाए कि भाई आप सिर्फ फिजिकल एसेट्स के पीछे मत भागिए, देर इज अ ट्रिमेंडस पोटेंशियल फॉर फाइनेंशियल एसेट्स। एक ये बात है। दूसरी बात यह है कि उनके नीड्स बहुत अलग होते हैं। जैसे हम लोग सिटीज में तमाम सारे फाइनेंशियल प्लानर्स, तमाम सारी फाइनेंशियल एजुकेशन कहलाती है, पीपल स्पीक अबाउट लाइफ स्टेज कि भाई आपके यहाँ पे बच्चा हुआ है, पढ़ाई का है, शादी का है, घर बनाना है, रिटायरमेंट है, दीज आर द क्लासिक यू नो। बीच में उसमें एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज में सेविंग फॉर वेकेशन, सेविंग फॉर व्हीकल, ये सब भी है। पर अगर आप छोटे शहर में जाएंगे ना तो काफ़ी अलग है। ये सब तो हैं, लेकिन उसमें सबसे अलग क्या है कि फंडिंग माइग्रेशन इज अ वेरी बिग नीड इन स्मॉल सिटीज एंड विलेजेस। हर व्यक्ति को ये बात साफ दिमाग में है कि फैमिली की अगली जनरेशन पढ़ लिख कर तैयार होनी चाहिए एंड शुड बी एबल टू एंजॉय अ सिटी लाइफ। क्यों? सिटी लाइफ में वो चीज़ें हैं जो कि छोटे शहरों गांव में कभी नहीं मिलेंगी, विच इज इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल फैसिलिटी एंड एजुकेशन एंड जॉब। तो ये सब जो है ना इज अ बिग ड्राइवर ऑफ माइग्रेशन। लेकिन माइग्रेशन जब प्लान करते बनते बैठते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि यू हैव टू रन टू हाउस होल्ड्स, वन इन योर विलेज एंड वन इन सम स्मॉल सिटी वेयर समबडी इज गॉन टू गेट एजुकेटेड और समबडी इज लुकिंग फॉर अ जॉब, एंड दैट काइंड ऑफ फंडिंग वी नेवर थिंक अबाउट। द सेकेंड ह्यूज रिक्वायरमेंट फॉर फंडिंग इज इमरजेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ मनी इन मेडिकल केसेस। तमाम सारे हम लोग हैं जो कि मेडिकल क्लेम वगैरह की तमाम सारी से पॉलिसीज ले ही लेते हैं, एंड जहाँ की लोग एम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयर्स ऑल्सो चिप इन, वहाँ ये सब कुछ नहीं है। इट टेक्स वन अनटाइमली डेथ इन द मार्केट इन द फैमिली टू वाइप आउट ऑल द सेविंग्स। इट इज मोर एक्सपेंसिव नॉट ओनली बिकॉज समबडी डाइड एंड यू पेड फॉर द मेडिकल एक्सपेंसिस, अगर समबडी डाइड आपको पूरे गाँव को खाना खिलाना पड़ता है, उसके लिए कोई बैंक आपको लोन नहीं देगा। सो दीज आर रियलिटीज एंड प्रैक्टिकलिटीज विच वी केम टू फेस विद। एंड आई एम हैप्पी टू से कि ये चीज़ें जो हैं दे मेक आर लाइफ इजियर, क्योंकि लोग जानते हैं कि इसके लिए पैसा नहीं मिलता है, तो उसके लिए सेव करेंगे. सो इन सम सेंस देर इज़ अ मैचिंग ऑफ नीड, बट देर इज स्टिल अ वेरी स्लो कन्वर्जन रेट. क्योंकि अनलाइक न्यूक्लियर फैमिलीज जहाँ की यू नो एक आदमी ने डिसाइड कर लिया या दो लोगों ने डिसाइड कर लिया, स्मॉल सिटी फैमिलीज आर जॉइंट फैमिलीज. तो जब तक बड़े भाऊजी नहीं कह देंगे तब तक वो होगा नहीं. भले ही द यंग फ्रेंड माइट थिंक यू नो ये बहुत अच्छा आइडिया है, इसमें बहुत पैसा बन जाएगा, लेकिन वो बड़े भाऊजी की परमिशन के बगैर नहीं होगा. सो देयर इज अ लॉन्ग सेल्स प्रोसेस. सो दीज आर द इंटरेस्टिंग चैलेंजेस ऑफ बीइंग इन स्मॉल मार्केट्स.
आशुतोष, आपने डिफरेंस बताया कि कैसे अर्बन और रूरल मार्केट्स और इन्वेस्टर्स अलग तरह से सोचते हैं और नीड्स थोड़ी डिफरेंट हैं, और आप उन्हें रूरल क्लाइंट्स को केटर कर पाते हैं क्योंकि आपका अप्रोच थोड़ा आपने मॉडिफाई कर लिया है. आपके 93 के एक्सपीरियंस से जब से आपने बाजारों को ज्वाइन किया, तब से आपने बाजारों में एवोल्यूशन कैसी देखी, आपने बदलाव कैसा देखा? जनरली आपने क्या देखा कि इन्वेस्टर्स ने या फिर मार्केट ने ही बहुत बड़े चेंजेस में हुए या फिर रेगुलेशन बदल गई, अगर उस पर कुछ आप थोड़ी चर्चा कर पाएं.
Yes, regulation has evolved very fast. I still remember the day when SEBI was formed, though I'm that old. and the good thing is the nature of this regulator has remained very open to changes, to consultation and a very consultative approach. But regulation aside, and I'm very proud to say, we are considered one of the best governed mutual fund market in the world. आपने शायद ये रिपोर्ट नहीं देखी होगी, कुछ दिन पहले देयर इज अ लीडिंग इंटरनेशनल एजेंसी दैट पुट आउट अ रिपोर्ट. देयर आर ओनली टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट रैंक ऑन द टॉप ऑन गवर्नेंस ऑफ म्यूचुअल फंड बिजनेस, दैट इज USA एंड इंडिया. सो अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस, बट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क हैपेंस बिकॉज टू मेक दैट हैपन. बट दैट असाइड, वेयर इज द फ्लो ऑफ द मार्केट इज कंसर्न एंड द नेचर ऑफ द ट्रेडिंग, उसमें बहुत बदलाव आया है. व्हेन आई जॉइन द मार्केट इट वाज ड्रिवन बाय इंडिविजुअल्स, देयर वाज अ लॉट ऑफ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. थैंक्स टू द रेगुलेशन ट्रांसपेरेंसी केम. आई वाज देयर व्हेन द डीमैट हैपेंड एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग हैपेंड. यू विल नॉट बिलीव, फॉर ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स नोबडी वांटेड टू डू इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग बिकॉज दे मेड मोर मनी आउट ऑफ फिजिकल ट्रेडिंग, क्योंकि उसमें इनसाइडर ट्रेडिंग चल जाता था शायद. लेकिन अब ये इम्पॉसिबल है एंड देयरफॉर द ट्रांसपेरेंसी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. As a result, global investors have got attracted to India and the money flow is tremendous. I will give you an example on this. And that example should also help a lot of people sitting on the fence to invest in this market. In 1979, Sensex started at 100. Today it is at 49,000. 1.5 years ago, when I had projected to my team that 50,000 pahunch jayega 1.5 years mein, people thought I was crazy. But it is 490 times the increase. If you do a CAGR, it will come to about 16.8%. In 1979, if you put 1,000 rupees in a FD in a bank, you would have got a CAGR of half of that. As a result, the total amount of money you would have had today would be in the region of 25 to 30,000 rupees. As compared to 4,90,000 of 1,000 rupees of Sensex. Lifestyle, where it's concerned, the living expenses. I was a young man. I used to go, my job was to go shopping for the family. I used to buy, you know, sugar, wheat, oil. These are all loose, no brands on there. If you look at the pricing of those, they've all gone up 50 times to around 40 to 50 times. Your FD has gone up 25 times. Your gold has gone up about 40 times. It was 1200 rupees to 10 grams. Now it is about 50,000. Real estate, where I sit in Mumbai, is expensive real estate. Even then, from 1000 rupees a square foot has gone to 60,000 rupees a square foot in prime. So while your cost of other investment options have given you 40, 50, 60 times, and your classic choice of deposit has given you 25 times, here is an option which has given you nearly 500 times. Which would you take? Eyes closed, it should be no नो क्वेश्चन आस्क, नो ब्रेनर, करेक्ट, कि यही लेना जरूर सही है. क्यों हुआ है? क्योंकि अरे मार्केट में इतना पैसा आया है दुनिया भर से, पीपल लाइक द ट्रांसपेरेंसी ऑफ अ मार्केट, दे लाइक द वे अवर कॉर्पोरेट्स वर्क, दे लाइक द वे अवर रेगुलेटर्स अप्रोच द मार्केट. इसकी वजह से पैसा आता जाता है एंड दैट टेक्स द वैल्यूएशन अप, पर ये आता रहेगा, ये कम नहीं होने वाला है.
आशुतोष, जब आप रिटर्न्स समझा रहे थे तो आपने बताया कि मार्केट्स का CAGR और फिक्स डिपॉजिट में अगर आपने पैसे लगाए होते तो CAGR डिफरेंट कितना रहा, तो आप जो नए निवेशक हैं उनको CAGR क्या होता है समझा पाएंगे?
कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब कि अगर आपने FD में पैसा लगाया होता तो आपको लगभग 8.5% हर साल का मिलता बिटवीन 1979 एंड नाउ, टेकिंग इन टू अकाउंट कि 1979 में रेट जो था इट वॉज मोर लाइक 15-16%, और कई साल ऐसे निकले हैं इस दौरान कि जहाँ की रेट जो था वो 5-6% रहा है. सो यू टेक एन एवरेज रेट जो कि समझिए कि गवर्नमेंट का बोरिंग रेट है, उसे थोड़ा बढ़ाएं तो 8.5% अगर आप लेंगे तो वो 1,000 रुपये जो हैं वो आज की तारीख में 25,000 से 30,000 रुपये हो जाते हैं, विच इज़ लाइक अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, यू नो 25-30 times. बट वेन यू कंपेयर कि यू नो सेंसेक्स अलोन has gone to nearly 500 times, then you feel ki why shouldn't I do that? And mehngai has run ahead of the 8% number. So agar aap deposit mein paisa rakhte to your money would have not been able to buy the same thing that you could buy for it in 1979. That is a limited point. Duniya mein sab jagah it is true that equities are the only asset class jo ki mehngai se aage pahunch pati hai aur kafi aage pahunch pati hai. And that is why it is important to invest in it. Yahan tak market trend ka sawal raha hai, big trend is the trading by the international investors, but is dauran mutual funds, insurance companies jo domestic bhi kafi badi ho gayi, aisa kareeb 15 20 saal pehle nahi tha. 15 20 saal pehle jab foreign investors aaye the wohi market ka direction set karte the, lekin ab mutual funds aur insurance companies ke paas bhi kafi paisa hai jo ki market mein lagaya jata hai. And they are themselves able to move the direction of the market. So ये बहुत बदलाव आया है. दूसरा बड़ा बदलाव यह आया है कि तमाम सारे करोड़ों individual investors have joined the market by opening their online accounts or their broking accounts. और सबसे ज़्यादा ये account खोले हैं पिछले एक साल में. You know that better than I do, right? Literally crores of people have opened these accounts in the last couple of years. And which is a good news, क्योंकि that means people are now realizing कि यहाँ पैसा बनता है. Yes, there is a risk, but it is a risk. मैं कहता हूँ कि जो market जिस तरह चलता है ना, कभी वो ऐसे एक line में ऊपर नहीं जाता है, वो हमेशा ऐसे 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 ऐसे, but direction ऊपर रहता है. I like to compare that to the heartbeat. अगर हार्ट बीट एक लाइन में चलती है ना तो यू नो व्हाट दैट मींस, दैट मींस यू हैव नो ब्रेथ लेफ्ट. ये हार्ट बीट है, ये दिस इज द हार्ट बीट ऑफ द इकोनॉमी, यू शुड इन्वेस्ट इन इट. एक और नजरिया आपको समझाता हूँ कि जैसा मैं एक बड़े पंजाब में गया था, एक बहुत बड़ी फैमिली फार्मिंग फैमिली से मिला, तो वहाँ तो भाई यू हैव टू सिट देयर एंड हैव लंच एंड देन ईट ड्रिंक लस्सी, तो मेरा तो पेट फट रहा था. पर बाबूजी ने बोला अच्छा बता तू करता क्या है. तो मैंने बोला बाबूजी मैं महिंद्रा जी के लिए म्यूचुअल फंड चलाता हूँ. तो महिंद्रा तो हमने बहुत सुना है, हमारे ट्रैक्टर सारे महिंद्रा से आते हैं, गाड़ियाँ भी हैं हमारी, बोलेरो तमाम सारी हैं, ये म्यूचुअल फंड क्या बनाते हो तू. मैंने बोला बनाता नहीं हूँ, मैं आपको समझाता हूँ एक बात. देखिए आपने कहा कि आप महिंद्रा की गाड़ी खरीदते हैं, आपने मारुति की भी खरीदी होगी. हाँ हाँ, शहर में अपना घर है, वहाँ मारुति की 3-4 गाड़ियाँ हैं. मतलब अभी पंजाब में बैठे हो तो आपके यहाँ मोटरसाइकिलें तो होंगी. हाँ जी बिल्कुल, हमारे मुंजाल साहब की गाड़ियाँ खरीदते हैं. मैंने बोला अच्छा आपके घर में आप TV वगैरह है, फ्रिज है? तो उस ज़माने में दे वर टॉकिंग अबाउट यू नो लोकल ब्रांड्स ऑल्सो, वीडियोकॉन व्हाटएवर. तो मैंने बोला देखिए ऐसा है कि आपके खेती करके मुनाफा आता है, उसे बचाते हैं पैसा, आप कहीं ना कहीं तो डालते होंगे. हाँ बैंक में रखते हैं, सबसे सेफ है. मैंने बोला अच्छा समझिए कि मैं महिंद्रा साहब से कहूँ कि भाई प्रतिपाल सिंह जी हैं पंजाब के हमारे खास, इनकी जो बचत है वो पैसा आप अपने बिजनेस में डाल दीजिए और उसमें से रिटर्न आएगा उनको दे दीजिए। अरे वो क्यों करेंगे, वो इतने बड़े आदमी, उनको पैसे की क्या जरूरत है। मैंने बोला पर आप सोचिए, अगर मुंजाल साहब, महिंद्रा साहब, मारुति के ओनर, अगर मैं उन्हें कह दूं कि आपका पैसा लेके अपने बिजनेस में डाल दें तो आपको मंजूर है? इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है जी। वो तो इतने बड़े बड़े कंपनियां हैं, इतना मुनाफा कमाते हैं, हम तो इतना कमा भी नहीं सकते हैं, तो वो हमारा पैसा लेके हमको मुनाफा साझेदारी करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैंने बोला बस आप समझ गए मेरा ये काम है कि आपका पैसा लेके ऐसे लोगों की कंपनी में लगाना जो कि हमेशा ढंग से कंपनियां चलाते हैं, मुनाफा कमाते हैं। लेकिन मैं एक बात कह देता हूं कि कभी कभी ऐसा एक साल भी आता है जब मुनाफा नहीं होता है, घाटा हो जाता है मार्केट में। बोले हमसे बेहतर कौन जानता है ये बात, हर तीसरी फसल में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो जाती है। सो इफ यू टेक दैट पर्सपेक्टिव, यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड द रिस्क इज व्हाट एंड द रिवॉर्ड इज व्हाट, यू आर गिविंग योर मनी फॉर डिप्लॉयमेंट इन टू मिस्टर टाटा, मिस्टर महिंद्रा, मिस्टर प्रेम जी, राइट, ऑल दिस पीपल। द मोमेंट यू गेट दैट पर्सपेक्टिव, पीपल बिगिन टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट वॉट दे कैन डू देमसेल्व्स। एंड यस, आई ऑलवेज एनकरेज पीपल टू गेट इन टू द मार्केट डायरेक्टली, दो आई एम अ म्यूचुअल फंड मैनेजर। मेरा हमेशा ऐसा कहना आता है कि आप मार्केट में जाएं, अपने आप करें, अगर आपको फायदा हुआ तो बहुत बढ़िया, गुड फॉर यू, लर्न फ्रॉम दैट, मेक मोर मनी। अगर घाटा हो तो लगे रहिए, घाटा घर लेके मत जाइए, मार्केट ने आपसे पैसा लिया है, पैसा वापस लाइए। आपसे नहीं होता है ना तो हमारे पास जरूर आइएगा, क्योंकि ये तो हमारा रोज का काम है। जिस दिन आपको लगे कि यार ये मैं रोज नहीं कर पाऊंगा, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, एक्साइटिंग है, पर नौकरी भी करनी है, धंधा भी करना है, घर भी चलाना है, अब इस पे बैठे रहेंगे तो कैसे होएगा, देन यू कम टू अस एंड फॉर अ स्मॉल फी ऑफ अबाउट 2% वी विल हैंडल इट प्रोफेशनली। दिस इज द प्रपोजिशन ऑफ अ म्यूचुअल फंड। सो दिस इज हाउ आई एक्सप्लेन टू पीपल एंड दिस इज हाउ आई हैव सीन द मार्केट गैदर मोर इन्वेस्टर्स।
आशुतोष, हमारा अगला सवाल आपसे यही होने वाला था कि लोगों को इक्विटीज़ में या इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्यों निवेश करना चाहिए, ये आपने ऑलरेडी बता दिया लोगों को, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड भी होते हैं, डेट फंड में कोई क्यों इन्वेस्ट करे?
देखिए ऐसा है, डेट यानी उधारी, मतलब किसी कंपनी ने, कंपनी की जो कैपिटल होती है, जो लागत होती है, जो पूंजी होती है जो बिजनेस में लगाते हैं, वो हमेशा पूरी इक्विटी नहीं होती है, उसमें डेट का होना जरूरी है, क्योंकि डेट होगा तो बैंक उसमें इंटरेस्टेड होंगे, बैंक उस बिजनेस को वॉच करेंगे। तो ये डेट कहाँ से आता है? नॉर्मली बैंकों से आता है, म्यूचुअल फंड्स या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बोरो करते हैं लोग, और उसमें एक फिक्स रेट मिलता है इंटरेस्ट। क्योंकि हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, हमारी एबिलिटी रहती है कि भाई हम अच्छी तरह रेट नेगोशिएट कर सकते हैं। कई दफ़ा मार्केट में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे कि पिछले साल मार्च के महीने में, मतलब मार्केट ने जोर से नीचे आया था कि कई सारे अच्छे लोगों के अच्छे खासे पोर्टफोलियो जो कि प्रॉफिट में चल रहे थे लॉस में आ गए थे। तब ये लगता है कि सारा का सारा पैसा इसी में रखा जाए, या कुछ ऐसा पैसा ऐसा भी हो जो कि इंटरेस्ट जहाँ कमाया जाए। अगर आप अपने आप किसी को लेंड करना चाहेंगे एज एन इंडिविजुअल, तो कई ऑप्शंस हैं, आप दोस्तों को दे सकते हैं, आप किसी रिश्तेदार को दे सकते हैं। आजकल P2P यानी पर्सन टू पर्सन लेंडिंग प्लेटफॉर्म भी शुरू हो गए हैं, या आप अगर चाहेंगे कि कोई प्रोफेशनली इसे लेंड करे एंड इंश्योर कि उसका रिटर्न आपके पास आए, सो यू कैन कम टू म्यूचुअल फंड्स। हम लोग जो लेंडिंग करते हैं वो क्लीन लेंडिंग नहीं होती है, वी डोंट गिव अ टर्म लोन, हम लोग बॉन्ड्स खरीदते हैं, तो यानी देर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्लेज। बॉन्ड यानी एक प्रण है किसी का कि हम आपको पैसा वापस देंगे, एंड वी हैव द एबिलिटी टू गेट देयर मनी बैक बिकॉज देयर इज अ बॉन्ड एंड देयर इज अ लीगल एग्रीमेंट टू गेट द मनी बैक, जो कि अगर आप चाहेंगे तो वो कंपनी आपसे नहीं लेगी, ले भी नहीं सकती अगर चाहे भी तो, क्योंकि उसे मना ही है। regulators do not permit very easily corporate borrowers to borrow directly from retail investors. ये पहले हुआ करता था लेकिन ये बंद कर दिया गया क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम आती थी एंड पीपल यूज़ टू लूज देयर मनी टू यू नो फ्लाई बाय नाइट कंपनीज. तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना इसमें सही है उन लोगों के लिए जिनको कम रिस्क लेने की आदत हो, और या उन लोगों के लिए जिनको चाहिए कि हमें एक रेगुलर इंटरेस्ट बेस्ड रिटर्न मिलता रहे. वो भले ही कम रहेगा एक्विटी से लेकिन इट विल बी मोर स्टेबल. तो इसलिए बॉन्ड फंड्स या लिक्विड फंड्स या लो ड्यूरेशन फंड्स, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स, इस तरह के फंड्स होते हैं, दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट फंड्स. तो उनका यही यही रोल है. एंड हैविंग सेड विच, आई शुड से दैट आज की तारीख में उन डेट फंड्स में जो ज़्यादातर पैसा है वो कॉरपोरेट से आया है हमारे पास, क्योंकि कॉरपोरेट्स का जो वो पैसा जो कि बिजनेस में तुरंत नहीं लगा होता है, 8 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना 6 महीने के लिए फ्री रहता है, वैसा पैसा जिसे कि वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उससे क्योंकि वो कभी बिजनेस में काम आएगा, वैसा पैसा वो लोग डेट फंड्स में लगाते हैं. इन टर्म्स ऑफ क्वांटम टुडे दैट इज़ अ वेरी लार्ज क्वांटम ऑफ द डेट फंड पोर्टफोलियो ऑफ म्यूचुअल फंड्स. रिटेल भी है बट कॉर्पोरेट अमाउंट इज प्रॉब्ली स्लाइटली लार्जर.
आशीष सर, जैसे आपने बताया कि कॉर्पोरेट अमाउंट डेट फंड्स में थोड़ा ज़्यादा है और रिटेल भी है लेकिन कम है, ये क्या डेट फंड्स थोड़ा ज़्यादा सूटेबल हैं कॉर्पोरेट्स के लिए या फिर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए कम सूटेबल है रिटेल के लिए, या फिर सूटेबिलिटी कोई क्राइटेरिया है?
सूटेबिलिटी की बात नहीं है, सिंपल ये है कि ऑफकोर्स देर मोस्ट सूटेबल फॉर कॉर्पोरेट्स, डेट फंड्स आर सूटेबल, नॉट द अदर वे अराउंड. कॉर्पोरेट्स विल नॉट रिस्क कि भाई हमको महीने भर बाद लोगों को पैसा वापस करना है या लोगों की सैलरी देनी है, तो वो पैसा वो इक्विटी में नहीं डालेंगे क्योंकि महीने भर बाद इक्विटी मार्केट नीचे हुआ तो फिर क्या करेंगे. तो इसलिए उनके लिए डेट फंड जो हैं वो सही है. लेकिन ऐसी सिचुएशन तमाम सारे इंडिविजुअल्स की भी होती है ना, कि समझिए आप सोचते हैं कि मुझे अभी 3-4 महीने में बच्चे की फीस भरनी है, वो पैसा पड़ा हुआ है, वो किसी डिपॉजिट में पड़ा है जो कि नॉट वेरी अट्रैक्टिव, या बैंक के अकाउंट में पड़ा हुआ है. सो उससे बेहतर रिटर्न डेट फंड्स में मिल जाएगा विद मच लेसर वॉलेटिलिटी इन द पोर्टफोलियो.
आशुतोष, आपने ये भी समझाया था कि आप इनकरेज करते हैं लोगों को कि वो डायरेक्टली ट्रेड करें और वो खुद सीखें कि कैसे बाजार काम करते हैं. अगर उनको पैसे बन रहे बहुत अच्छा, अगर पैसे नहीं बन रहे हैं तो फिर वो आपके पास आ सकते हैं या फिर उससे भी अपनी सीख ले सकते हैं और फिर और ट्रेड कर सकते हैं. उसी के इलैबोरेशन में क्या आप बता पाएंगे कि किस सिनेरियो में म्यूचुअल फंड में निवेश करना ज़्यादा बेहतर हो सकता है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो किसी को मिलते हैं अगर वो म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं?
So let me start by saying why you should choose a mutual fund for your financial goals. आप ट्रेड तो जरूर कर सकते हैं, उसमें बहुत मजा आता है. अरे एक आफ्टरनून में मैंने 5,000 रुपये 10,000 रुपये बना लिया, ऐसे लगता है कि अरे मजा आ गया. दैट इज द गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट विच सेटिस्फाइज, बट दैट कैन ऑल्सो टेक यू डाउन. म्यूचुअल फंड का क्या रोल है कि अगर आप वेल्थ अक्यूमुलेशन करना चाहते हैं रेगुलरली, तो हमारे यहाँ एक सिंपल सेट स्कीम होती है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP, आपने सुना होगा. हर महीने अपने आप को फोर्स कीजिए कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आप SIP में डाल देंगे और अलग अलग गोल्स के लिए अलग अलग SIP शुरू करिए. सपोज आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए सरप्लस एवरी मंथ एंड यू हैव 5,000 रुपीज, लेट अस से आप एक गोल सेट करिए सपोज कि किसी की पढ़ाई के लिए है, दूसरा गोल सेट करिए कि समझिए कि एक अपना एक घर लेना है उसके लिए भी बचाना है, क्योंकि घर लेने जाएंगे अगर लोन भी तो एक यू हैव टू कम अप विद द मार्जिन मनी फॉर योरसेल्फ, करेक्ट, वो 25% तो अपने आप ही डालना पड़ता है. तो सब दो गोल्स हो गए. आप जानते हैं कि घर का गोल है वो आप 5 साल में कर पाएंगे, लेकिन बच्चे की पढ़ाई जो है वो अभी 3 साल में पैसा भरना पड़ेगा. तो एक 3 साल की SIP आप 3,000 रुपये की शुरू कीजिए और एक 5 से 10 साल की SIP आप 2,000 रुपये की शुरू कीजिए. और फिर आंख बंद करके डालते जाइए उसमें पैसा, वो वेल्थ अपने आप अक्यूमुलेट हो जाएगी। एक दिन यू विल सडनली रियलाइज वेयर यू सच अ लॉट ऑफ मनी। दैट इज द बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड, जो कि आप डायरेक्ट ट्रेडिंग में करना मुश्किल कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी मुश्किल होता है। और सिमिलरली इफ़ यू आर अबाउट लुकिंग एट रिटायरमेंट, उसमें एक अलग तरह की स्कीम आती है विच इज़ कॉल्ड सिस्टमेटिक विड्रॉल। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं रिटायर होऊंगा, बड़ा सा एक पीएफ का कॉर्पस मिलेगा, उसे डिपॉजिट में डाल देंगे, इंटरेस्ट पे जिएंगे। ये लोग भूल जाते हैं कि इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट का जो टैक्स होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब फॉर अ पर्सन हुज सर्टेन लेवल ऑफ इंटरेस्ट, अगर आप महीने साल भर का लेट्स से आपके पास 3-4 लाख रुपये इंटरेस्ट आ रहा है, तो यू विल एंड अप पेइंग सम 20-25% टैक्स। वेयर एज सिस्टमेटिक विड्रॉल में क्या होता है कि आप पैसा डाल दीजिए फंड में, और उतना ही पैसा जो आपको हर महीने चाहिए वो सिस्टमेटिकली हर महीने विड्रॉ कर लीजिए। जब आप विड्रॉ करते हैं तो विड्रॉल का जो ज़्यादा पोर्शन वो होता है जो कि आपका मेन कॉर्पस विड्रॉल है, तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। टैक्स लगता है सिर्फ उतने पोर्शन पे जो कि इनकम बढ़ी है। सो योर टैक्स रेट ऑन सिस्टमेटिक विड्रॉल इज फार फार लोअर देन डूइंग अ इंटरेस्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट। दिस इज ऑन द यूजर साइड। वेयर द फंडामेंटल बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड कम्स, एक बहुत बहुत लोग इस बारे में सोचते नहीं है। एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर आप पैसा मार्केट में खुद डालेंगे, और समझिए आपने 10,000 रुपये डाले और आपके 5,000 रुपये बन गए, तो 5,000 रुपये जो बन गए ना, उस पर आपको तुरंत टैक्स भरना पड़ेगा, और वो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, जो कि आपके इनकम टैक्स रेट के बराबर होगा। और उस पर सो समझिए वो 25, 30, 40 डिपेंडिंग ऑन योर स्लैब, वो तुरंत जाता है आपके हाथ से। लेकिन म्यूचुअल फंड जब वो सेम इन्वेस्टमेंट करता है और सेम 5,000 रुपीज़ बनाता है ना, म्यूचुअल फंड को टैक्स पे करने का एग्जम्पशन है। वो आप ही का पैसा है, आप ही के अकाउंट में जा रहा है वो, लेकिन ऑन योर बिहाफ द म्यूचुअल फंड डज नॉट हैव टू पे एनी टैक्सेस ऑन इट्स इनकम एट ऑल। तो अब दोबारा जब इन्वेस्ट करने जाएंगे आप, फर्स्ट सिनेरियो में आपने 5,000 कमाया, तो 15 में से समझिए 2,000 टैक्स में चले गए, तो यू कैन इन्वेस्ट ओनली 13,000 मोर, मतलब म्यूचुअल फंड कैन इन्वेस्ट द एंटायर 15,000 अगेन एंड अगेन एंड अगेन। उसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वेरी फ्यू पीपल थिंक अबाउट दिस, दैट म्यूचुअल फंड हैज दिस ट्रिमेंडस इनबिल्ट बेनिफिट, जो कि इट इज अवेलेबल टू इट फ्रॉम द सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। दूसरी बात यह है कि जब आप पैसा इनकम म्यूचुअल फंड में डालते हैं, इट गोज इनटू अ ट्रस्ट। वो म्यूचुअल फंड कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाता है, इट इज पुट इनटू अ ट्रस्ट। इन्वेस्टमेंट वो ट्रस्ट से होता है। म्यूचुअल फंड कंपनी डिसाइड करती है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी वो पैसा यूज नहीं कर सकती है। एंड द मोमेंट दैट हैपन्स, तो समझिए कि आपने किसी ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट किया, आई एम सॉरी टू से बट यू आर अ ब्रोकर, बट ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट किया एंड यू पुट अ ट्रेड थ्रू एंड दैट ब्रोकर फॉर एनी रीजन शट्स डाउन, उसके यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई, क्या हो गया, देन यू हैव टू वेट फॉर द ब्रोकर टू बिकम वैलिड और कम बैक इन टू बिजनेस और बिकम सॉल्वेंट अगेन टू पे यू बैक। बट इन द केस ऑफ अ म्यूचुअल फंड, इफ अ म्यूचुअल फंड कंपनी शट्स डाउन, इट डज नॉट अफेक्ट द ट्रस्ट एट ऑल। Your money is still there, as same value as it was. So that huge safety has been built into the structure by SEBI, that the trust does not dissolve even if the fund manager dissolves. यहाँ तक कि जो trustees होते हैं, they have the power to remove the fund manager and get a new fund manager. तो ये भी होता है. So this is a huge comfort कि आपका पैसा आप ही के नाम में, it is available to you irrespective of what happens to the company that manages it. So these are some benefits that come to you from the mutual fund structure.
आशुतोष, आपने बताया कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो लोगों को टैक्स के बेनिफिट्स थोड़े मिलते हैं म्यूचुअल फंड में अगर वो निवेश करें। उसके अलावा काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो बिहेवियरल बेनिफिट उन्हें मिलता है कि धीरे धीरे उनका पैसा इकट्ठा होता रहता है और कुछ सालों में उनके पास बहुत बड़ा कॉर्पस हो जाता है। उसके अलावा जैसे आप पहले भी बता रहे थे कि इंडिया की जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है, बहुत अच्छे हैं हम रेगुलेशन के टर्म्स में, तो ट्रस्ट के मामले में इन्वेस्टर्स काफ़ी आसानी से अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। ये सब जानने के अलावा लोग ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, किस तरह की स्कीम्स होती हैं, अगर उस पर आप थोड़ा इलाबरेट कर पाए।
सो देयर आर टू और थ्री वेज टू लुक एट इट। सबसे पहली बात तो यह है कि देयर आर टू क्लासिक टाइप्स ऑफ स्कीम स्ट्रक्चर्स। एक कहलाता है ओपन एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड ऐसा होता है कि जिसमें यू कैन पुट योर मनी एनी डे एंड टेक आउट एनी डे, सो लॉन्ग एज इट इज अ बिजनेस डे। ओपन एंडेड फंड हर शाम को, रात को 9 बजे से तक अपनी हर स्कीम की वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू, अपने एम्फी के वेबसाइट पे पोस्ट करता है। तो समझिए आप एक फंड खरीदें, महिंद्रा उन्नति योजना या महिंद्रा फोकस योजना, उस महिंद्रा फोकस योजना की जो नेट एसेट वैल्यू है पर यूनिट की, वो आपको हर रात को उस दिन का प्राइस हर रात को मिल जाएगा। उस प्राइस पे आप खरीद सकते हैं उस दिन, बट यू हैव टू पुट योर रिक्वेस्ट फॉर परचेज बिफोर 3 o'clock इन द आफ्टरनून। जब आप खरीदते हैं आपको मालूम नहीं होता है कि इस फंड का यूनिट प्राइस आज रात को क्या होगा, सो दैट यू कैनॉट रन अगेंस्ट द फंड। तो आपको रात को मालूम पड़ता है कि मैंने इतने पैसे में खरीदा, एंड नेक्स्ट डे अगेन इट चेंजेस बिकॉज नेक्स्ट डे मार्केट ओपन्स, आपका इन्वेस्टमेंट किया गया है, उसकी वैल्यू हो गई है, तो जो वैल्यू बढ़ेगी घटेगी जो कुछ भी होगा उसको वो नेट एसेट वैल्यू में आपको नजर आएगा हर रोज। आप जिस दिन चाहें रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, और द मोमेंट द रिक्वेस्ट इज स्टैम्प्ड एंड रिसीव्ड इन एनी ऑफ द रिसीविंग सेंटर्स, एंड टिपिकली एवरी म्यूचुअल फंड हैज अ फ्यू हंड्रेड ऑफ दोज बाय द हेल्प ऑफ इट्स इट्स आरएनटी एजेंट, इफ नॉट दैट ऑन द वेबसाइट। द मोमेंट यू हैव अ कॉन्फर्मेशन कि आपको आज की एनएवी में एग्जिट मिल जाएगा, विद इन अ फ्यू डेज टाइम, टिपिकली यू नो 3-4 days, यू गेट द मनी बैक इन योर अकाउंट, डायरेक्टली इन योर अकाउंट। ये आपके यहाँ चेक नहीं आएगा क्योंकि आपको अपना अकाउंट नंबर देना पड़ता है ताकि देर इज सेफ्टी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई और ही बिजनेस कर ले आपके बिहाफ पे कि वो पैसा ले जाए। सो वी मेक श्योर द मनी कम्स टू योर अकाउंट। दिस इज कॉल्ड एन ओपन एंडेड फंड क्योंकि ये ओपन है, आप कभी भी अंदर जाएं कभी भी बाहर आएं। इसके अलावा एक क्लोज एंडेड फंड कहलाता है। क्लोज एंड फंड क्या होता है कि वो किसी शेयर आईपीओ की तरह बिकता है, कि उसका एक ओपनिंग पीरियड होता है, उसमें आप खरीद लें, उसका एक अलॉटमेंट हो जाएगा, उसके बाद आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फंड से और यूनिट्स नहीं खरीद सकते हैं, आप उसे वापस फंड को बेच भी नहीं सकते हैं। ओपन एंड फंड में जितने भी यूनिट आप खरीदते हैं या बेचते हैं आप डायरेक्टली फंड से इंटरेक्ट करते हैं। क्लोज एंड फंड जब क्लोज हो जाता है तो समझिए उन्होंने 500 करोड़ कलेक्ट किया, तो फंड का साइज हमेशा के लिए 500 करोड़ की बेस पे ही रहेगा, मार्केट वैल्यू के हिसाब से बढ़ सकता है क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होंगे वो मार्केट वैल्यू में बढ़ेंगे, लेकिन आप उस फंड से नए यूनिट नहीं खरीद सकते हैं। अगर आपको यूनिट खरीदना है, क्लोज्ड एंड फंड्स हैव टू बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज लाइक अ शेयर। यू कैन बाय दोज यूनिट्स फ्रॉम सम अदर होल्डर हु कैन सेल यू, सो द नंबर ऑफ यूनिट्स डू नॉट चेंज। जबकि ओपन एंड फंड में नंबर ऑफ यूनिट्स कैन चेंज एवरी डे। तो क्लोज एंड फंड कौन लोग लेते हैं? ज़्यादातर क्लोज एंड फंड जो होते हैं वो 5, 10, 15 साल के भी होते हैं। पीपल हु हैव अ लॉन्ग होराइजन, जिनको जल्दी पैसा निकालने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, ऐसे लोग लेते हैं। टिपिकली दीज माइट बी थीम्स, जैसे कि मुझे याद है कि 1990s में तमाम सारे क्लोज एंड फंड आए थे ऑन द थीम ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजीज, क्योंकि तब ये लगता था कि अभी डालेंगे तो ये 5 या 10 साल में बहुत पैसा बन जाएगा। एडवांटेज विद क्लोज एंड फंड इज फंड मैनेजर का जो कॉर्पस रहता है ना वो ऊपर नीचे नहीं होता है रोज, सो ही कैन फोकस अ लॉट मोर ऑन इन्वेस्टिंग, जबकि ओपन एंड फंड में कॉर्पस रोज चेंज होता है। बट एट द सेम टाइम द एडवांटेज टू द कस्टमर इज हायर इन ओपन एंड फंड, बिकॉज अगर आपको लगता है कि ये मार्केट गिरने वाला है आप तुरंत अपना पैसा निकाल लीजिए, तो आप जैसे पैसा निकालेंगे आप रिक्वेस्ट डालेंगे, वो रिक्वेस्ट देके फंड मैनेजर उतने पैसा जो आपको देना है उतने की शेयर्स बेच के वो पैसा आपको दे देगा। सो बोथ टाइप्स ऑफ फंड्स एग्जिस्ट इन इंडिया। द ओपन एंड फंड्स आर सब्सटैंशियली लार्जर इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ टोटल कॉर्पस। मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द कॉर्पस मैनेज बाय म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया इज ओपन एंडेड, बिकॉज साफ है कि भाई इन्वेस्टर्स को कम्फर्ट रहता है कि भाई हमको जब चाहे हम इसमें से निकल सकते हैं, दैट कम्फर्ट इज देयर, एंड दैट इज वाई क्लोज्ड एंड फंड्स हैव नॉट टेकन ऑफ सो वेल इन इंडिया। ये दो तरह हैं। फिर इसके अलावा इक्विटी और डेट फंड होते हैं, जैसे हमने पहले कुछ देर पहले बात की। इक्विटी फंड में तमाम टाइप के फंड्स होने लगे हैं और सेबी ने इसके बारे में एक लंबा एनालिसिस करके टाइप्स ऑफ फंड्स का एक सर्कुलर निकाला है। उसके हिसाब से 36 टाइप ऑफ डिफरेंट फंड्स आर पॉसिबल, मतलब बिल्कुल 36 व्यंजन वाला मामला है ये कि 36 तरह के फंड हो सकते हैं जो कि कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऑफर कर सकती है। उससे आगे होंगे तो सेबी को अप्रोच करके आप परमिशन ले सकते हैं, दे मे और मे नॉट गिव यू डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर प्रपोजिंग। पर 36 स्टैंडर्ड टाइप्स होते हैं बिटवीन इक्विटी एंड डेट, जैसे कि लार्ज कैप यानी बड़ी कंपनियां, मिड कैप यानी मिडिल साइज कंपनियां, स्मॉल कैप यानी छोटी कंपनियां, फोकस फंड जो कि इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो है वो सिर्फ 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है, या फिर हाइब्रिड फंड्स होते हैं जो कि कुछ पैसा इक्विटी में कुछ पैसा डेट में एक ही फंड में होता है, तो आपको एक बैलेंस मिलता है अपने पोर्टफोलियो में। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो हैं, अलग अलग 36 तरह के स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल।
आशुतोष, ये सुनने के बाद में अभी लोगों ने जान लिया है कि किस तरह के फंड्स होते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं म्यूचुअल फंड्स में, कैसे वो ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड टाइप चुन सकते हैं। अगर कोई निवेश करना चाहे वो अपने लिए सही फंड कैसे चुन सकता है, अगर कोई डूज एंड डोंट्स आप बता पाएंगे कि क्या चीजें देखनी चाहिए एक निवेशक को अपने लिए सही फंड चुनने से पहले।
देखिए, कुछ कुछ हद तक मैं समझता हूँ पास्ट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इट हैज सम रोल टू प्ले। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि ये जरूरी नहीं है कि जो पास्ट में हुआ होगा वो आगे होगा। जैसे कि लोग समझते हैं कि भाई जो मार्च महीने में हुआ था वो पास्ट में कभी नहीं हुआ, तो अगर आप पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देख के किसी फंड में पैसा डालते हैं, अगर आप 15 मार्च को, तो 20 मार्च को आपको मालूम होता कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी, तो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड वुड नॉट हैव हेल्प यू। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि जिस ढंग से वो फंड मैनेज किया गया है, उसकी उसका फंड मैनेजर का क्या ओरिएंटेशन है, इसमें रिसर्च करना फायदे वाला होता है, क्योंकि हर फंड मैनेजर हर महीने अपने फंड्स की कमेंट्री अपने वेबसाइट पे रखता है, फंड की फैक्ट शीट्स होती हैं, वो फंड कितना वॉलेटाइल है उसके इंडिकेटर्स भी होते हैं उसमें। तो आप सोचिए कि भाई जो फंड ज़्यादा वॉलेटाइल होगा उसमें ज़्यादा रिटर्न आने की संभावना ज़रूर है, लेकिन उसमें लॉस की संभावना भी ज्यादा है। तो आप मतलब जो कहते हैं ना कि आप कितने जिगर वाले हैं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन वो डिसाइड करने से पहले देख लीजिए कि अवेलेबल क्या है, कि वो आपको जितना जिगर है वो मैच होता है क्या फंड मैनेजर से। तो इसमें इसमें टाइम लगता है। कई सारे ऐसे कंपनियां हैं जैसे आपकी कंपनी है जो कि इस बारे में एक रेटिंग भी पब्लिश करते हैं फंड्स को देख के कि भाई इन्होंने क्या किया है पहले और इनका क्या स्टाइल लगता है। तो वो जो डेटा है उसे देखना उससे फ़ायदा होता है ज़रूर। थोड़ी समझ आने लगती है कि भाई किस तरह के फंड हाउस में मैं पैसा डालूं, किस तरह का फंड मुझे जचेगा। कि पर सबसे पहले ये सोचना ज़रूरी है कि मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये प्राइमरी है। बहुत से लोग कहते हैं भाई पैसा बनाना है, अगर आपका इतना ही विच इज़ नॉटिंग रॉन्ग, सबको पैसा बनाना भाई, मुझे भी बनाना है, मैंने तो आपको बताई मेरी स्टोरी कि मैं क्यों आया था, लेकिन वो पैसे का करेंगे क्या। अगर आप इतनी दूर की सोच लेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि मुझे कितनी रिस्क लेनी चाहिए। क्योंकि जब बच्चे की पढ़ाई के लिए आप पैसा बना रहे हैं, आप शायद उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क लेने में तैयार नहीं होंगे, लेकिन आप सोच रहे हैं कि यार अगले साल, ये साल तो गया अभी वो पैंडेमिक में, लेकिन 2 साल में ज़रूर मुझे पेरिस जाना है, आप रिस्क भी ले लेंगे क्योंकि आपको मालूम है 2 नहीं तो 3 में हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। सो व्हाट इज द गोल, या अगर आपको लगता है कि बस पैसा बनाना ही इम्पॉर्टेंट है और उससे आगे कोई गोल नहीं है, देन आई वुड क्लासिफाई यू एज अ हाई रिस्क टेकर। कि आप किसी भी कीमत पर पैसा बनाना चाहते हैं, तो किसी भी कीमत पर जो लोग पैसा बनाना चाहते हैं सोच के चलें कि भाई ये जा भी सकता है, क्योंकि मार्केट का नेचर वही है। इन माय 25 इयर्स 30 इयर्स इन द मार्केट आई हैव सीन द मार्केट गो डाउन एटलीस्ट 7 टाइम्स एंड गो डाउन वेयर द हार्ट स्टॉप्ड एंड व्हेन द हार्ट स्टॉप्स दैट इज द टाइम टू बाय। ये हमने भी सीखा, आई मीन डिस्पाइट बीइंग इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, जब हार्ट स्टॉप्स तो ये लगता है कि यार खरीदें कि नहीं खरीदें। सो वी हैव लर्नड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड वी बेनिफिटेड फ्रॉम दैट। उसमें बहुत ज़्यादा जिगर लगता है, लेकिन ये अपनी रिस्क प्रोफाइल समझना बहुत ज़रूरी है। जो लोग वेल्थ के लिए पैसा बनाना चाहते हैं ना, वो एक क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करें। मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ एंड आई एम नॉट एबल टू गेट प्रॉपर आंसर्स फ्रॉम मोस्ट पीपल, बट आई थिंक आई पुट देम ऑन द पाथ ऑफ डीप थिंकिंग। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हाउ मच मनी डू यू नीड टू हैव टू कॉल योर सेल्फ रिच? आपके पास कितना पैसा होना चाहिए कि आप अपने को अमीर कह सके? ये आंसर कर लीजिए, देन यू विल नो वॉट यू नीड टू डू इन द मार्केट प्लेस। डिफिकल्ट आंसर है, बहुत लोग खो जाते हैं इस क्वेश्चन में कि मैं क्या सोच रहा था, क्या सोचूं, क्या नंबर है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू एनालाइज दैट, इट इज इम्पॉर्टेंट टू आंसर दैट क्वेश्चन।
आशुतोष, जैसे आपने बताया कि ये एम्बिग्विटी शायद गोल फॉर्मेशन का दुश्मन है, जब भी लोग गोल्स के बारे में सोच रहे हैं अगर उन्हें हिचकिचाहट है कि उन्हें क्या चाहिए, तो बहुत बार उसी कंफ्यूजन में वो शायद अपने फंड्स का डिसीजन नहीं ले पाते हैं ठीक से, कि कौन से फंड में उन्हें रुपया लगाना चाहिए, कितना रिस्क उन्हें अपने गोल्स के हिसाब से लेना चाहिए। मानिए कि किसी ने फंड्स चुन लिए हैं, उनके उन्हें पता है कि कितना रिस्क वो लेना चाहते हैं और उनके पास एक सिलेक्शन ऑफ फंड्स भी है, एक बास्केट उन्होंने तैयार कर लिया। अब वो सोच रहे हैं कि पैसा तो उनके पास इतना है और बास्केट में उन्होंने 5-6 फंड्स चुन लिए जो उन्हें सूट कर रहे हैं, अब वो किस हिसाब से उनमें रुपया लगाएं, वो कैसे सिलेक्शन करें कि कितना रुपया कहाँ पे लगाना चाहिए, अगर इसके बारे में आप थोड़ा बता पाए।
See, the simple answer is, many people try to equalize. कि 5 फंड है, 1000 रुपया लगाना है, चलो सब में 200 डाल देते हैं, which is not a bad way, it works pretty well. But I have found that if you go by the relative size of funds, कि आपने 5 फंड लिए, उन funds में जो सबसे बड़ा fund है वो 1000 करोड़ मैनेज कर रहा है, और जो उसके बाद वाला है उसमें 500 हैं, फिर उसके बाद जो 3 हैं वो 100 करोड़ के हैं। तो मैं समझता हूँ इट मे बी स्मार्टर टू यूज़ अ सिमिलर प्रोपोर्शन फॉर इन्वेस्टिंग योर मनी, क्योंकि जो ज़्यादा पैसा मैनेज कर रहा है, इट इज़ बेटर टू एक्सपोज योरसेल्फ मोर टू दैट फंड, क्योंकि उसकी जो मार्केट में एबिलिटी टू मनूवर विल बी मोर। लेकिन कई लोग इक्वल कर लेते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो जो साइज़ है वो आज का है, आगे बढ़ के साइज चेंज भी हो सकता है। द सेकेंड थिंग विच आई फाउंड इज, इफ यू फाइंड बाय चांस ए फंड मैनेजर और अ फंड हाउस जिसका ट्रैक रिकॉर्ड देख के आपको लगता है कि ये लोग जो करते हैं ना, इसमें मुझे टेंशन नहीं रहेगा, आई विल स्लीप प्रॉपरली एट नाइट, देन यू कैन ओवर एलोकेट टू दैट फंड, डजंट मैटर द साइज। आज की तारीख में यह कहना कि नाम देख के इन्वेस्ट करिए तो बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि किसका नाम कम है? हम महिंद्रा के हैं, लेकिन क्या दूसरों का नाम से कम है? ऐसा तो कोई कह ही नहीं सकता है ना, सब नामी गिरामी लोग हैं इस मार्केट में, बड़े बड़े नेम्स हैं। तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू चूज ऑन द बेसिस ऑफ ओनली नेम, बट इफ यू रीड फ्रॉम द फंड कमेंट्री या फंड मैनेजर्स राइटअप्स, समझ में आने लगता है कि ये लोग कैसा सोचते हैं।
आशुतोष, करंट मार्केट सिनेरियो पे एक सवाल, मानिए अभी कोई निवेशक नया बाजार में आया है या फिर पहले उन्होंने निवेश नहीं किया, काफी उन्हें डर है कि बाजार क्योंकि बहुत बढ़ चुके हैं, कभी भी टैंक कर सकते हैं, कभी भी गिर सकते हैं, रोज उन्हें ये चिंता रहती है कि अभी उन्हें निवेश करना चालू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस सिनेरियो में आप की राय क्या रहेगी कि अभी कोई निवेश करना चालू करे, वो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करे, आप क्या कहेंगे इन निवेशकों को?
Interesting question. What is a good time to enter the market? I wish I knew better. But nahi, sahi main batata hu. You are right. The market has run up quite a lot. Will it run up more? I have no doubt. Kyunki ye kyun ho raha hai? Main aapko samjhata hu. 2008 mein ek crisis hua tha. Us crisis se bahar nikalne ke liye tamam desh ke tamam jo reserve aur central banks kehlate hain, उन्होंने एक तरीका निकाला कि क्वांटिटेटिव ईजिंग करेंगे, यानी तमाम सारा पैसा मार्केट में डाला, मतलब बैंकों को दिया, सो दैट दे कुड गेट आउट ऑफ देयर स्ट्रेस्ड एसेट्स। बैंकों ने वो पैसा उठा के मार्केट्स में डाल दिया, यानी कि स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट, गोल्ड, सब में। वी कॉल दीज एसेट मार्केट्स, मतलब ये एसेट्स हैं। मेरे हिसाब से 2008 और 2014 के बीच में लगभग 2014-15 के बीच में लगभग 27 ट्रिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग बाय डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स वाज डन। इतना पैसा मतलब पिछले 200 साल में मार्केट में नहीं आया होगा, विच इज व्हाई ऑल द मार्केट्स वेंट अप, क्योंकि सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज डिडंट गो अप बाय द सेम स्पीड। वो भी हुआ धीरे धीरे, लेकिन मार्केट वैल्यूज वेंट अप and good quality went up faster than the poorer quality eventually. अब हम बैठे हैं 2020 में जहां दोबारा प्रॉब्लम हुआ। The quantum of support that the countries are giving to their economies is of a even higher order now. मतलब वो 27 ट्रिलियन छोटा दिखेगा, वो पैसा आएगा जरूर, मार्केट में आ रहा है, लेकिन उसमें एक अलग डायमेंशन आ गया है इसके साथ। पिछली दफा जब पैसा दिया था, पैसा बैंकों को दिया गया था, पैसा हाउस होल्ड्स को नहीं दिया गया था। तो बैंकों ने पैसा लेके इन्वेस्ट कर दिया, सीधा का सीधा सारा का सारा मार्केट में आया। इस दफा तमाम सारा पैसा बैंकों को भी दिया गया है, कॉरपोरेट्स को भी दिया गया है और हाउस होल्ड्स को भी दिया गया है। हाउस होल्ड्स को जब पैसा मिला है जिसके लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया है, ये पैसा उनको टैक्स रिफंड के तौर पर लगभग आया है, वो पैसा रोजमर्रा के चीजों के खर्च में जा रहा है। हम जानते हैं कि सारी दुनिया की इकोनॉमीज जो है ठप पड़ी है, सब नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ में है। सो प्रोडक्शन इज गोइंग डाउन बट मनी चेजिंग द प्रोडक्शन इज गोइंग अप। सिंपल लॉजिक है, दिस इज गोइंग टू कॉज इन्फ्लेशन। तो जब इन्फ्लेशन होगा, एंड ऐसी फोरकास्ट है तमाम सारे इकोनॉमिस्ट की कि इस साल के पहले हाफ H1 में, हाफ वन में, फर्स्ट हाफ में इन्फ्लेशन विल शो इट्स हेड इन मेनी इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में शायद इतना नहीं हो, बिकॉज हमने ऐसा कोई बड़ा मूव नहीं किया है। वी हैव ट्राई टू सपोर्ट द इकोनॉमी थ्रू सम मॉनेटरी पॉलिसी, बट फिस्कल पॉलिसी वी डू नॉट हैव दैट मच एल्बो रूम ऑल्सो। किसी को हम दे नहीं पाएंगे कि भाई आपका टैक्स का चेक वापस ले लीजिए। तो इंडिया में नॉट सी दैट मच इन्फ्लेशन, बट द वर्ल्ड मार्केट्स विल सी इन्फ्लेशन। And when inflation comes, the market takes a little bit of pushing back. क्योंकि inflation का मतलब है कि cost of goods is going to go up, profitability of corporates will go down. It is already starting to show in oil, which is the main energy commodity of the world. It is starting to show in steel, which is the second largest commodity of the world. It is starting to show in coal, which is another very large energy component. तो जब input cost बढ़ जाएगी, तो already जो दबी हुई companies हैं जिनका profitability already जो थोड़ा दबा हुआ है, वो थोड़ा दबाव में और आएगा, ये सोच के market जो है थोड़ा नीचे आने की संभावना है। लेकिन हमारा ऐसा सोचना है कि inflation जो है transitory है, 3-6 महीने का रहेगा global market में, and therefore this may be an opportunity to invest if the market corrects. हेयर इज माई एडवाइस, दो ढंग से आप इस मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं। नंबर एक ये कि आप एक लिक्विड फंड या लो ड्यूरेशन फंड का अपना अकाउंट खोलें, जो पैसा इन्वेस्ट करना है उसमें डालें, वहां से एक SIP शुरू करें, एक अच्छी हाई क्वालिटी इक्विटी फंड में। SIP में क्या होगा, आज भले आप जो खरीदेंगे वो थोड़ा मे बी इट इज हाई प्राइस, मे बी इट इज नॉट हाई प्राइस, लेकिन अगर गिरेगा तो अगली दफा जब आप खरीदेंगे तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, फिर आप जब अगली दफा खरीदेंगे तो डिफरेंट प्राइस होगा। तो इस तरह से जब आप खरीदते जाएंगे यू विल गेट एन एवरेज प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एट द सेम टाइम योर मेन कॉर्पस इज स्टिल अर्निंग अ डिसेंट डेट मार्केट रिटर्न, वो ऐसे बेकार पड़ा हुआ नहीं है। दिस इज वन अप्रोच। द अदर अप्रोच इज आप एक अच्छा हाइब्रिड फंड खरीदें जो कि कुड इवन बी 50-50% इन डेट 50% इन इक्विटी। बिकॉज जब इक्विटी में पैसा नहीं बनेगा और जब रेट बढ़ेंगे तो पैसा डेट में बनेगा। सो इफ यू गोइंग टू हाइब्रिड फंड यू हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। सो दीज आर द टू ऑप्शंस दैट यू कैन लुक एट इफ यू आर बिगिनिंग टू इन्वेस्ट टुडे। बट अगर आपको वेल्थ बनाना है तो सिंपल एडवाइस है कि आप इक्विटी खरीदते जाइए SIP के तौर पे। डू नॉट वरी अबाउट द प्राइस, कीप अ वेरी लॉन्ग होराइजन।
तो जैसे आपने बताया कि अगर चाहे अप्रोच कैसा भी हो इन्वेस्टर्स का, चाहे वो अभी लिक्विड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहें और धीरे धीरे उसे SIP करके इक्विटी में बदलना चाहें या हाइब्रिड फंड में पैसे लगाना चाहें, अगर वो बिना हिचकिचाए पैसे लगाते हैं तो फिर एक चीज़ होता है कि मानिए कि कल अगर बाजार करेक्ट भी करता है, वो हो सकता है कि उनकी हिचकिचाहट ना जाए, वो अपॉर्चुनिटी को लूज करते जाएंगे। लेकिन अगर वो अभी कोई एक्शनेबल कोई एक्शन लेते हैं तो उनकी निवेश करने की जर्नी चालू हो जाएगी और टाइमिंग जो करना चाहते हैं वो अपना रीएलोकेशन करके रीबैलेंसिंग करके अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। इतना कुछ सुनने के बाद में अगर कोई निवेशक अभी भी ये सुन रहा है तो उनका अगला सवाल ये रहेगा कि अच्छा निवेश तो हम कर लेंगे लेकिन मिलेगा कितना? तो ये जो कितना मिलेगा का सवाल है, इसका अगर आप जवाब दे पाए आशुतोष जी।
मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इक्विटी मार्केट्स में मैंने आपको एग्जांपल दिया शुरू में, जस्ट द सेंसेक्स बिटवीन 1979 एंड नाउ इज गिवन एन CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ ऑफ 16.78%। दैट इज अ बेंचमार्क। अगर आप उसके आसपास नहीं कमाएंगे लॉन्ग टर्म में तो आप इक्विटी में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? वो वहाँ का बेंचमार्क है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पैसा बोरो करती है और उस पर इंटरेस्ट पे करती है, वो इंटरेस्ट जो है ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम इज होवर्ड इन द रीजन ऑफ अबाउट 8%। मतलब गवर्नमेंट 8% पे रिस्क फ्री पैसा देती है। मतलब अगर आप गवर्नमेंट को पैसा देंगे तो उसमें रिस्क नहीं है, पैसा जरूर वापस आएगा, करेक्ट ना? तो वो लगभग 7.5% है, करीब 775। तो वो वहाँ का बेंचमार्क है। तो अगर आप एक अच्छे बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करेंगे ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यू शुड ट्राई टू गेट रिटर्न बेटर देन गवर्नमेंट। एंड इफ यू पुट इन इक्विटी यू शुड डू एटलीस्ट एज गुड एज सेंसेक्स। बट आई मस्ट से हैविंग सेड विच, पिछले 25 सालों का रिटर्न आउट ऑफ द 40 इयर्स दैट आई स्पोक अबाउट इन इक्विटी इज मोर लाइक 13%, 13%। ऐसा हुआ था कि 20-25 साल पहले जब हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, उससे पहले मार्केट वॉज नॉट ट्रांसपेरेंट, तमाम तरह की प्रैक्टिसेस होती थी गुड और बैड, तब रिटर्न बहुत ज़्यादा बनता था। तो ये 1680 में दैट इज इंक्लूडेड। लेकिन जब से मार्केट ट्रांसपेरेंट हुआ है, 13-13.5 द काइंड ऑफ रिटर्न दैट द मार्केट इज गिवन। इफ यू यूज 13.5 एज अ बेंचमार्क ऑन वन साइड एंड 775 ऑन द अदर, देन यू हैव अ बेंचमार्क टू गो विद कि आपको कितना, देन आप देखिए आप फंड सिलेक्ट करते हो कि भाई उन्होंने 5-10 साल 15 साल में क्या दिया है। बट दिस इज द ट्रेंड इन द मार्केट प्लेस।
निवेश करने के बाद भी एक मुश्किल होती है जब कोई भी नए निवेशक बाजार को ज्वाइन करते हैं, इवन पुराने निवेशक भी हों, कि जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं उसमें डटे रहना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे AMFI का डेटा अभी जो रिसेंटली निकला था, उसमें ये पता चला कि 6 में 10 में से 6 लोग ही 3 साल से ज़्यादा तक अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश अपना मेंटेन करते हैं, और बाकी लोग एट सम पॉइंट वो ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं। तो उन फर्स्ट टाइम निवेशकों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी कि किस हिसाब से वो इसे अप्रोच करें? मतलब जानते तो वो भी हैं कि उन्हें डटे रहना चाहिए, लेकिन किस तरह से इसे देखें? क्या वो बंद करके अपने अकाउंट्स को रख दें ताकि वो कभी देखे नहीं, या फिर क्या आपकी राय रहेगी उनके लिए?
देखिए, ऐसा है, कई रीजंस होते हैं व्हाई पीपल लोग निकल जाते हैं। अक्सर इंसिडेंट्स लाइक मार्च ऑफ 2020, इतना डर हो जाता है कि यार ये तो बिल्कुल गया। लेकिन मेरी ऐसी सलाह है कि जब भी आप, वेन एवर यू फेस फियर, यू आस्क योर सेल्फ कि क्या आप सब कुछ बंद करने वाले हैं? अगर कोरोना वायरस की वजह से मार्केट ड्रॉप हो गया तो क्या आप अपना बिजनेस बंद करने वाले हैं? हाँ, गवर्नमेंट ने कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन किया होगा, लेकिन आप करने वाले हैं क्या? अगर आप अपनी कमाई कम नहीं करना चाहते हैं तो याद रखिए कि मार्केट भी अपनी कमाई कम नहीं करना चाहता है, वो भी वापस आएगा। अप्रैल के महीने में बहुत लोगों से मैंने ये बिल्कुल मिन्नतें की थी कि देर इज नो बेटर टाइम टू स्टार्ट एस आई पी देन नाउ। तमाम सारे लोगों ने सलाह मानी, बहुत से लोगों ने सलाह नहीं मानी, बिकॉज वी आर एंटरिंग अ वॉलेटाइल फेज ऑफ द मार्केट, वी स्टिल आर इन अ वॉलेटाइल फेज ऑफ द मार्केट। एस आई पी वुड बी अ ग्रेट अप्रोच। दूसरा ये क्वेश्चन है कि अगर आपने ये सोच के पैसा डाला है कि यार 5 साल के बाद बच्चे की पढ़ाई में लगेगा, जब वो प्रोफेशनल करियर चूज करेंगे, तो एक 3 महीने के बाद निकालने में क्या ढंग है? अगर आपने 5 साल के लिए रखा है तो रखिए, ऐसा समझ लिए कि एफडी है, डाल दिया, अभी निकाल नहीं, निकालेंगे नहीं, क्योंकि निकालेंगे तो एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि वो दोबारा आएगा नहीं, खर्च हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में रहेगा तो वो रिकवर तो कर ही लेगा। वो जो सेंसेक्स 100 से 50 हज़ार रिकवर करके ही आया है ना, तो तमाम दफे डूबा, मतलब ऐसा डूबा कि लोगों को लगा कि अब तो गए। तो ये नेचर है मार्केट का, इससे सुलह कर लीजिए। लव द वॉलेटिलिटी। अगर आपके पास और थोड़ा सा पैसा पड़ा हो जब मार्केट डूबे तो डाल दीजिए उसमें, तो एक तो आपकी कॉस्ट एवरेज हो जाएगी और दूसरे आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। क्योंकि क्यों बढ़ता है मार्केट? मार्केट इसलिए बढ़ता है कि आप जैसे हम लोग जो कि छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, देश की जीडीपी को बढ़ाते हैं। अगर हम ये कहेंगे कि ये मार्केट डूबने वाला है, तो हम ये कह रहे हैं कि हम काम करने को तैयार नहीं है। हम अगर हम ही काम करने को तैयार नहीं होंगे तो फिर ठीक है, निकाल लीजिए। लेकिन जब तक आप ये सोचते हैं कि मैं तो अपना बिजनेस कर ही लूंगा, छोटा नहीं तो बड़ा, आज तकलीफ है तो कल ठीक हो जाएगी, इफ यू हैव दैट एटीट्यूड, ये सोच के चलिए कि आप ही देश की जीडीपी को बढ़ा रहे हैं। और देर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रेशियो कॉल बफेट रेशियो, ये वॉरेन बफेट का कॉन्ट्रीब्यूशन है, कि देश का जो जीडीपी होता है और देश का जो मार्केट कैप होता है मार्केट का, यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ द ट्रेडेड मार्केट, टेंड्स टू बी द सेम नंबर ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम। तो अगर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ इन किस को लेके चलें, और इंडिया का जीडीपी 2.6 ट्रिलियन डॉलर्स है, तो मार्केट कैप आज की तारीख में 2.8 या 2.9 ट्रिलियन या 2.3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हो गया होगा, यानी थोड़ा सा जीडीपी से आगे है। जिस दिन जीडीपी बढ़ जाएगा कभी, फिर वो मार्केट नीचे रह जाएगा। जिस दिन जब वो होगा, तब ऐसे लगता है कि अरे मार्केट गिर गया। तो याद रखिए कि हम ही लोग काम करके मार्केट को बढ़ा रहे हैं, जीडीपी को बढ़ा रहे हैं, ये तो हमारा हिसाब है। अपना हिसाब हम नहीं कमाएंगे तो और कौन कमाएगा? बाहर वाले तो कमा ही नहीं। अगर इस तरह की सोच सोच से चलेंगे तो कभी निकालेंगे नहीं।
जो निवेशक की जर्नी है वो हमने पूरी देखी। ये कंक्लूड करने से पहले आशुतोष जी, ये मानिए जो म्यूचुअल फंड्स में हमने ग्रोथ देखा है वो ज़्यादातर टॉप 30 शहरों से आता है, और जो बाकी जगह से ग्रोथ रहा है वो स्टैग्नेंट सा रहा है। आपकी राय में ऐसा क्यों हो रहा है? जो छोटे शहरों से और गांव से उतना ग्रोथ क्यों नहीं देखने को मिल रहा जितना मिल सकता है?
बहुत सीधा सा प्रॉब्लम है, आप जैसे लोग नहीं हैं पहुंचने वाले वहाँ, जो कि टेक्नोलॉजी के सहारे इन्वेस्टर के फोन में जाके उसे कन्विंस कर लें कि भाई अब तो निवेश शुरू कर। सीरियसली द प्रॉब्लम इज दैट देर आर नॉट इनफ डिस्ट्रीब्यूटर्स। if you go beyond the top 30, 40, 50 cities, number of distributors per town just drops. तो कोई अप्रोच करने वाला, समझाने वाला, सुझाने वाला, सलाह देने वाला है ही नहीं. मतलब यहाँ तक कि आपको वो सब छोड़ दीजिए, आपका फॉर्म फिल करके लेके वो सर्विस वाला भी कोई नहीं है. तो देयरफॉर द प्रॉब्लम इज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव रीच. तो देयरफॉर हैट्स ऑफ टू कंपनीज लाइक योर्स, वो हैव टेकन दिस इनिशिएटिव टू टेक दिस वेल बियॉन्ड, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से ही ब्रिज बनेगा. आदमियों के बस की बात नहीं है कि वहां तक पहुंच जाए. एक जमाना था जब मैं यूटीआई चलाता था, 575 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया ईच हैड अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम यूटीआई. और मैं सब जगह गया हूं, तो मुझे मालूम है, मैंने देखा है उन लोगों को. लेकिन अब वो लोग नहीं है. इट इज़ नॉट अ वायबल प्रोपोजिशन टू हैव अ फिजिकल मोटर ब्रिक एंड मोटर स्ट्रक्चर इन दोस प्लेसेस. तो ये होगा जरूर, मैं समझता हूँ. लेकिन तब तो जनरेशन चेंज हो गई है, लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया है इसमें, तो पीपल हैव टू बी एक्सप्लेन. बट खुशी की बात यह है कि द यंगर पीपल आर मोर ओपन टू टेक द रिस्क, टू टेक द चांसेस एंड लर्न. तो मैं समझता हूँ ये जरूर होगा आगे.
आशुतोष जी, ये जो भी लोग सुन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सीखा आपसे, हमने बहुत कुछ सीखा आपसे, आपके बारे में भी वो कुछ जानना चाहेंगे. इतने साल जो आपने इंडियन फिनेंशियल मार्केट्स में गुजारे, और आपने बहुत सारे रेगुलेशंस को और मार्केट को इवॉल्व होते हुए देखा, उस दौरान आपने पर्सनली कैसे इन्वेस्ट किया, और आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी कैसी रही है, अगर उसके बारे में लोगों को बता पाएंगे कि कोई मिस्टेक्स अगर जिससे आपको कुछ सीख मिली और लोगों को वो आप पास ऑन करना चाहते हैं.
सो जैसे मैंने बताया, शुरू में व्हेन आई जॉइन द मार्केट, आई केम फ्रॉम द एफएमसीजी बिजनेस, एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी अ ह्यूज एडवांटेज. क्योंकि समझिए, जो जितनी भी बड़ी कंपनियों का नाम ले लीजिए जो कि 1993 में इंडिया में बिजनेस कर रही थी, उनकी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में दिखता था. तो जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, मुझे लगा यार ये कंपनियां जो हैं ये तो बहुत बढ़िया कंपनी है. तो मैंने उनके शेयर जरूर खरीदे, और खरीद के भूल गया, सही में भूल गया, यहाँ तक कि डीमैट भी नहीं करवाए थे. एक ऐसी कंपनी में बताता हूँ कि जिसके मैंने 50 शेयर खरीदे थे, क्योंकि आई वॉज जूनियर पर्सन. तो 50 शेयर खरीद के बस भूल गया, और उसके शेयर मुझसे 4 साल पहले किसी फाइल में मिले. मैंने सोचा यार ये अब तो डीमैट में भी निकल गए होंगे, तो मैंने ऐसे डरते डरते भेज दिया, कन्वर्ट हो गए. वो 50 शेयर समझिए कन्वर्ट होके आए, तो मैं बिल्कुल भौचक्का रह गया. देवर 5000 शेयर ऑफ अ कंपनी विच आई हैड बॉट एट 12 रुपीज. मैं नहीं बताऊंगा कि वो 12 का कितना, यू कैन इमेजिन. बट ये मेरी जर्नी रही है. वन साइड आई हैड द बेनिफिट ऑफ कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द मार्केट एंड नोइंग हाउ कॉर्पोरेट्स मेक मनी. वो मैंने किया है खुद, मैंने बेचा है, मैंने साबुन बेचा है, मैंने तेल बेचा है, मैंने सॉफ्ट ड्रिंक्स बेचा है, आइसक्रीम बेचा है. बट समवेयर अलोंग द वे आई ऑल्सो टुक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्क विद वॉट यू कॉल्ड यू नो पेनी स्टॉक्स. उसमें भी सीखा कि लोग करते हैं, देखें हम भी करके देखते हैं. डे ट्रेडिंग भी किया, फिर ये जमा लगा कि हमारे काम नहीं है ये सब. डे ट्रेडिंग अपना काम नहीं है, इसे साइड में रखते हैं, क्योंकि जिस दिन एक दिन का ट्रेड रह गया तो फिर वो बहुत भारी पड़ता है. देन फॉर्चुनेटली आई गॉट इन्वॉल्व इन द म्यूचुअल फंड बिजनेस. समझ में आया कि ये सही तरीका है. ऑल द इनिशियल म्यूचुअल फंड्स, द बिग म्यूचुअल फंड्स इन द कंट्री दैट यू सी टुडे, बिकॉज आई वॉज एट DSP which were the largest distributors for mutual funds in those days. I have launched each one of them and I made investment in each one of them. 20-25 saal pehle, that has paid off handsomely. As I grew older and my family became larger and needing, and therefore little more settling down, ability to take risk obviously reduces, because not because you can't take the risk, because now you have more to lose. And you don't want to lose. आपने काफी मेहनत करके कमाया है. Today, I'm quite old, and it may not be very long before I decide to, you know. When I say very long, of course, long period of time. But at some point in time, everybody has to hang up their boots. When I do, I have an approach to which I will move to. which will be very, very conservative, which will be more in the mode of capital preservation. When I was less than 30 years old, I was very aggressive. I thought I knew everything, and it paid off. Then I took risk as I was older, and I thought I knew the market. The market taught me a lesson that, I'm Mr. Market, you don't know me well enough. Mr. Market teaches you a lesson every now and then. I learned those lessons and I said, okay, let me not, you know, throw away what I want. As I grow older, my ability or willingness to lose what I want stops me from taking certain types of risks. And when I think of hanging up my boots, I will create a portfolio, which I call the cockroach portfolio. Why cockroach? Shayad aapko malum nahi hoga that cockroach is the only animal in the world that has survived in its original, more or less original form from the beginning of time. Usse kuch nahi hota. Even a nuclear attack cannot kill a cockroach. It very quickly mutates and survives. So you need a portfolio that survives, because when you are not earning anything, then you need a portfolio that you know you can live by. Us portfolio ke components alag alag hote hain. And that particular type of portfolio is what I would want to build hang up my boots. So that is the kind of journey I've had. No regrets at all. Yes, I've made losses. And I can tell you, if you made a loss in the equity market and you're still willing to invest, you are right for this market. Today, when I hire people in my company, this is my first requirement of people. Do you invest in the market? And if people say, no, but you know, I'm not sure, my money is lying in a deposit, I don't care how bright you are. Is market mein success ke liye passion ki zarurat hai. And therefore, if you want to be wealthy using the equities approach, mutual fund approach, please remember that you have to have a passion for this. Vaiga, when you start making money, you realize that, you know, what Hemendra Kothari said is true. So yeah, that's been my journey.
आशुतोष, आपने ये भी बताया कि जब आपने डीएसपी ज्वाइन करी थी उस समय आपने वॉरेन बफे को पढ़ा और आपने और डिटर्मिनेशन के साथ फाइनेंशियल मार्केट्स को ज्वाइन किया. कौन से निवेशक हैं, चाहे इंडिया में हो चाहे अब्रॉड हो, जिन्हें आप एडमायर करते हैं, अगर आप उनके बारे में कुछ बता पाए?
So if you want to learn from the best, smartest money manager of the world, they've come in different time zones, time frames, and time eras. Buffett, of course, is there along with his right hand man, which is Charlie Munger, who I admire a lot. They're very practical people. They are not financial. Of course, they know the numbers, but they don't come across. जब आप मिलो ना उनसे, they don't come across as financial people. उन्हें business की समझ है. And therefore, I learned कि मुझे जो शुरू शुरू में advantage हुआ था, वो इसीलिए हुआ था क्योंकि there was a business understanding I had of the FMCG business. तो जरूरी है कि आप ऐसे investors को पढ़ें जिन्होंने उससे benefit किया है. Investors I admire are Jeremy Grantham. He runs GMO. I like to read John Bollinger. क्योंकि वो, अगर आप numbers speak to you, then John, no, there is nobody better than John Bollinger. If people like to read a little book which can get them started on the market, is a very small book called The Little Book That Beats the Market. I think Joey Blatt, if I'm not wrong. Of course, you can read sophisticated books like, you know, Taleb, Fooled by Randomness, or whatever, but wo bahut, you know, they're very involved texts. I used to read a lot Peter Lynch, One Up on Wall Street. Everybody has some lessons to learn from. Not everybody turns out to be right all the time. But harek ka perspective, it is worth learning. Main aapko bataun, for a very long time, I chased and understood, invested a little bit with a very interesting company in the US, which was a technology company. They called themselves Technologies. The name will come to me in a minute. They used to run a fund called First Eagle Fund. एंड दे वर बेसिकली अ ब्लैक बॉक्स जो कि कंप्लीटली मशीन लर्निंग. There were six PhDs from Stanford who created the black box. They started investing in derivative trades across asset types, equities, commodities, currencies, everything. They made so much money that they shut down the fund and returns people money and said, we don't want to manage your money. We will manage our own money. Matlab unka compounded annual rate of return was in excess of 20% for 25 years. So, Renaissance Technologies was the name of the company. So there's something to learn there. I knew when I went there and I spoke to them and I gave them a little bit of money when they were still a fund. Later on when I researched, I knew that I couldn't do this. So wo khwab chhod diya. Matlab, you should know when to leave it. Pagal jaise uske piche jaake fayda nahi hai. Itni mathematics ki understanding mujhe nahi hai ki main ek, I can write up a, you know, a whole algorithm which will make money. You should know ki bhai, this is not your cup of tea, though it will make a lot of money. So learning from different masters is the key in this market. I also read a lot of economic history and I learned from that. And I found that there is a school of economics thinking called the Austrian School of Economics, which I find the most practical bunch of people. There was a gentleman called J.B. Mises, M-I-S-E-S. He started thinking in that direction. A famous innovation economist called Schumpeter, also Austrian. Those people actually brought a lot of logic to thinking about economies and how they operate. Once you begin to understand that, you'll see where the market fits in that context. Aajkal bahut log kehte hain ki economy is in one place and the market is in a different direction. I don't see a disconnect. The economics of the Western globe is driving the market of our country. Too many people try to find a local connection that may not exist. The fiscal economics of USA and UK and Europe and the fiscal politics of those administrations wanting to keep their populations happy is driving our market. Now, this logic you catch when you start reading economic history like the Austrian School of Economics. You understand the connections. So this is the kind of thing I read and I learn from.
Thank you, Ashutosh. हमारे साथ ये एपिसोड करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. बहुत टेक अवेज थे हमारे लिए भी और जितने भी निवेशक इसे देख रहे हैं उनके लिए. आशा है कि आगे भी हम आपके साथ और एपिसोड्स कर पाएं.
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.